से प्यारे बाबा के अनमोल रत्न जो ब्राह्मण जीवन की सूक्ष्म धारणाओं को अपने जीवन क्षण क्षण थी, ब्राह्मण जीवन की योग भक्ति के पश्चात जो चमक जो रूहानियत आई है वो हमारी ब्राह्मण जीवन के शेष समय में सदा कायम रहे, उसके लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं राजयोगी ब्रह्मा कुमार सतीश भ्राता जी। हम एक हाथ की ताली से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भ्राता सतीश जी बाल्यकाल से कहें या अध्ययन काल से कहें, किशोर काल से कहें, बाबा के ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। आपने उत्तर प्रदेश की धरणी अयोध्या के पास गांव से ज्ञान प्राप्त किया और तब से लेकर आप बाबा के बेहद यज्ञ में मधुबन में सेवाएं दे रहे हैं। हमारी वरिष्ठ दादियां और वरिष्ठ भाई बहनों के भोजन को योग युक्त बनाने का स्वर्णिम अवसर आपको सेवाओं पे मिला। इतना ही नहीं, यज्ञ में कोई भी छोटे बड़े कार्य होते हैं उनका शुभारंभ आपकी मधुर वाणी ग्रुप की गीत और संगीत के द्वारा ही होता है। आप सब ने सुने होंगे ना आपके मधुर वाणी ग्रुप के गीत, देखा है ना भैया जी को। वो ये गीत गाते और सुनाते ही नहीं है बल्कि उन्हें बनाते भी हैं। आज तक आपने लगभग 5000 से ज्यादा गीतों का लेखन किया है। ये अद्भुत शक्ति प्यारे बाबा ने आपको दी और आपने उसको अपने जीवन में उतारा, जिसके परिणाम स्वरूप आप राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के 20 प्रभागों में से एक प्रभाग आर्ट एंड कल्चर विंग है, उसके आप मधुबन कोऑर्डिनेटर हैं। बड़ी तन्मयता से आप साहित्य कला और इस प्रभाग की सेवाओं को राष्ट्रीय रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप निखारते रहते हैं। आप ने जो गीत बनाए हैं उनमें से 500 गीतों को गॉडलीवुड स्टूडियो के अंदर जो हमारे देश के पार्श्व गायक हैं, चाहे वो लता मंगेशकर हो, चाहे आशा भोसले हो, चाहे कविता कृष्णमूर्ति हो, अन्य सभी वरिष्ठ गायकारों के द्वारा गाए गए हैं और स्टूडियो में समय समय पर प्रसारित होते हैं। ऐसे प्यारे बाबा के अनमोल रत्न जो ब्राह्मण जीवन की सूक्ष्म धारणाओं को अपने जीवन में धारण करने के लिए संकल्पित हैं, वो आज हम सबको इस भट्टी को ब्राह्मण जीवन की धारणाओं से जीवन पर्यंत ऐसी ही रूहानियत खुशबू और शक्ति भरी रहे, उसके लिए हमें अपने अनुभव युक्त विचारों से अवगत कराएंगे भ्राता सतीश भ्राता जी। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थक तो नहीं गए हैं भट्टी से? थक तो नहीं गए हैं? थके नहीं है ना? हाँ, लंबा हाथ उठा लें, लंबा हाथ उठा लें। थके नहीं है? चार्ज हो गए? और चार्ज हो गए हैं? फर्स्ट क्लास बाबा हम चार्ज हो गए हैं, सब कही कहिए बाबा हम चार्ज हो गए हैं। बहुत अच्छे, बधाइयां। ऐसी आनंददायी, ज्ञानदायिनी, शक्तिवर्धिनी, तेजस्विनी, ऐसे अनमोल भट्टी के लिए हम सब प्यारे बाबा को धन्यवाद करते हैं। कैसे धन्यवाद करेंगे? अभिनंदन कीजिए। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से, पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा। कदम कदम पर बाबा का धन्यवाद करते रहना केवल पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना ही नहीं, बल्कि उसके प्रति आभार से भाव से भरे रहें, उसके प्रति स्नेह भाव रहे, उत्तरोत्तर मन में उसके गुणगान करते रहें, उससे हमारी आत्मवार्तालाप चलती रहे। ये हमारी वर्तमान की सबसे मुख्य धारणा होनी चाहिए। ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में हम सब चल पड़े, बाबा की बड़ी शक्तियां मिलती हैं, बड़ी पावर्स मिलती हैं। बाबा ने अपना बनाया एक जीवन नया बन गया, जीवन का बड़ा आनंद आया। सबको आनंद आया है, सबको आनंद आया है। ब्राह्मण जीवन में जो बहुत खुश हैं, जो बहुत खुश हैं वो जरा हाथ उठाएं, जो बहुत खुश हैं लंबा हाथ उठाएं, सब नहीं उठा रहे। कुछ को लगता है कि आनंद नहीं आया है, आसपास देखें कोई हाथ नहीं उठा रहे हैं, देखो दीदी ने भी हमारे हाथ उठाया। ठीक, थैंक यू, एक बार बधाई करें अपने आप को। सर्वप्रथम आप सबको एक बार फिर से मधुबन में आने की, ऐसी अनमोल भट्टी करने की और अपने आप को शक्तिशाली बनाने की, आप सबको बहुत बहुत बधाइयां एक बार और देना चाहता हूं। एक बार और ताली बजा के अपना अभिनंदन कर ले। आज के मुरली के अनुसार भी एकांत में बैठ अपने आप से बात करने वालों का, हम अविनाशी आत्मा हैं, बाप से सुनते हैं, ऐसी प्रैक्टिस करने वालों का, योग में अलबेले न बनने वालों का और अलबेले बन करके ऐसे बोल न बोलने वालों का, जो बोलते हैं हम तो शिव बाबा के बन ही गए हैं, हम तो याद में है ही। बाबा कहते हैं ये गपोड़े, ये अलबेलापन है, ये अलबेलापन है, इसमें तो पुरुषार्थ करना होता है। सवेरे उठकर अपने आप से बातें करें, रू रिहान करें, बाबा से वार्तालाप करें। देही अभिमानी बच्चे, ऐसे बच्चे देही अभिमानी बनेंगे और देही अभिमानी वाले बच्चे जो हैं वो अपना चार्ट रखेंगे, देही अभिमानी बच्चे अपना चार्ट रखेंगे, रू रिहान करेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं निकालते हैं, है? समझ गए ना? इस बात को अच्छी तरह समझने वालों का धारणा के सार के अनुसार ज्ञान के साथ साथ याद में रहने वालों का, अच्छे मैनर्स धारण करने वालों का, बहुत बहुत मीठा बनने वालों का, मुख से पत्थर न निकालने वालों का, एकांत में बैठकर अपने आप से बातचीत करने वालों का, पवित्रता की युक्तियां निकालने वालों का और देही अभिमानी बनने वालों का, अमृत वेले बाबा को बहुत प्यार से बैठकर याद करने वालों का, और वरदान के अनुसार वायरलेस सेट द्वारा विनाश के अंतिम बाप के डायरेक्शन को भी कैच करने वाले, वॉइसलेस बनने वाले आप सब विशेष आत्माओं का, और कर्म करते हुए योग को किनारे न करके अलबेला न बनने वालों का, रूहानी रॉयल्टी वालों का, प्योरिटी की पर्सनालिटी वालों का, आज की इस सभा में ब्राह्मण जीवन की सूक्ष्म धारणाएं क्या हैं उसका अध्ययन करने वालों का, आप सबका एक बार फिर से मैं आज की क्लास में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की मुरली को ध्यान से देखें तो ब्राह्मण जीवन की सूक्ष्म धारणाएं बहुत ही क्लियर है, स्पष्ट है। हम सब जानते हैं कि बाबा का बनने के बाद ही हम सब उसी समय पर वरदानी बन जाते हैं, वरदान मिलता है योगी भव और पवित्र भव, योगी भव पवित्र भव। हम योगी भी बन जाते हैं और पवित्र भी बन जाते हैं, बन जाते हैं। बाबा के वरदान तो मिलते हैं, सबको वरदान मिला है, लेकिन अभी तक भी हम राजयोग का अभ्यास तो कर ही रहे हैं, तो योगी बन गए हैं। योगी बनना ये ब्राह्मण जीवन की मोटी धारणा है, सूक्ष्म धारणा है निरंतर योगी बनना, निरंतर योगी बनना, ठीक है। ज्ञान सुनना, मुरली सुन लेना, ये मोटी धारणा है, पहली धारणा है। लेकिन मुरली धर बन करके मुरली के साज पर माया को सरेंडर कराना और मुरली धर बन करके मुरली का आनंद लेना और आनंद देना, प्रदान करना, ये सूक्ष्म धारणा है। पवित्र बन गए हैं लेकिन संपूर्ण पवित्रता की ओर बढ़ना, हमारे संकल्प श्वास स्वप्न तक भी हमारी संपूर्ण पवित्रता हो, जिस पवित्रता के आधार से ये हमारे शरीर के जो अवयव हैं, जो अंग अंग हैं, ये शरीर भी पावन बने और हमसे पवित्रता की वृत्ति के वाइब्रेशंस निकले, जो वायुमंडल में चारों तरफ फैले, तो वनस्पति भी, पशु पंछी प्राणी भी, पांचों तत्व भी पवित्रता का अनुभव करके वो भी पवित्र बन जाए, वो भी पवित्र बन जाए, ये हमारी सूक्ष्म धारणा है। सेवा हम सब कर रहे हैं, सेवा पहली सब्जेक्ट हमारी सेवा ही है, लेकिन सेवा करते करते संतुष्ट होना ये है बल, संतुष्टता बल है, और सेवा करते करते सेवा का फल प्रसन्न रहना, प्रसन्न हो जाना, सेवा हमको प्रफुल्लित करे, सेवा हमको आनंदित करे, सेवा में भारीपन ना हो, सेवा में कोई स्वार्थ भाव ना आए, सेवा में ये कामना ना आए कि मैं कुछ कर रहा हूं या कर रही हूं तो लोग मुझे अप्रिशिएट करें, मेरी तारीफ करें, आपने बहुत सेवा की, आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं, आप तो बहुत अच्छा क्लास कराते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, कोई कामना ना रहे, इसको कहते हैं सेवा की सूक्ष्म धारणा। ये चारों सब्जेक्ट, इनकी सूक्ष्मता के अनुभव, गहरे अनुभव में जाना है। आप सबने बहुत अच्छी क्लासेस सुनी होगी। अब आपको हम बहुत ज्यादा गहराई में न जाते हुए प्रैक्टिकल एक्शन प्लान देते हैं। एक्शन प्लान, रेडी हैं सब? सुन रहे हैं ना? रेडी हैं सभी? करना क्या है भट्टी से? एक तो भट्टी से सर्वप्रथम आप सबको, जो हमारे सारे विकारों की जड़ है, वो है आलस्य और अलबेलापन, जिससे हमको रोज सवेरे उठते हैं तो जब हम याद में बैठते हैं तो रूबरू होना पड़ता है। अक्सर करके भाई बहनों को देखा जाता है कि एक रस स्थिति होती नहीं। शुरू में जब बाबा के बनते हैं, ज्ञान में आते हैं, तो हमारी स्टेज जो है सीधा ऊपर जाता है, ग्राफ ऊपर जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि बाबा आपको लाता है ज्ञान में, शुरू शुरू बच्चा कोई नया जन्मा होता है तो माँ बाप सपोर्ट करते हैं, वो उनके हवाले होते हैं तो उनका पूरा प्यार मिलता है। तो शुरू शुरू जब हम ज्ञान में आते हैं तो हमको बाबा की पूरी परवरिश मिलती है, पूरी पालना मिलती है, तो हम बाबा 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 ही बोलते हैं। लेकिन जब थोड़ा ज्यादा समझदार हो जाते हैं, तथा कथित समझदार नहीं होते हैं, लेकिन जब इधर उधर लोगों से वाकिफ हो जाते हैं, लोगों की कमजोरियों से पता लग जाता है कि क्या क्या कमजोरियां हैं, चलते चलते हम इधर भी देख लेते हैं, उधर भी देख लेते हैं, तब हमको अपने ऊपर थोड़ा बाबा से दूरी लगती है। तब लगता है जो ग्राफ हमारा पहला जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो बहुत कम हो जाता है। तो शॉर्ट में कहूं तो अमृत वेला जो आलस्य आता है, अलबेलापन आता है, अभी तक भी जब हम याद में बैठते हैं तो झुटका आता है, नींद आती है, तो समझ लेना चाहिए कि अभी भी हमारा जो सूक्ष्म पुरुषार्थ होना चाहिए आलस्य और अलबेलेपन से मुक्त होने का, अभी तक वो संभव नहीं हुआ है। आपको कुछ चीजें बताता हूं आपको। सबसे पहले अगर इस भट्टी से आपने एक संकल्प ले लिया कि मुझे शेष ब्राह्मण जीवन में अमृत वेला एक तो मिस नहीं करना है, और दूसरा मिस न करते हुए अमृत वेला को इतना शक्तिशाली बनाना है जो हमारी पूरी दिनचर्या शक्तिशाली बन जाए, उसमें आलस्य का कहीं रिंचक मात भी नाम ना हो, अलबेलापन जरा भी ना हो, व्यर्थ संकल्पों की भाग दौड़ ना हो। आज आपको कुछ युक्तियां बताता हूं। सर्वप्रथम आपको अमृत वेले को आलस्य मुक्त बनाना है, ठीक है? तो बैठ जाए हमारी तरह जैसे मैं बैठा हूं। ये बैठक, जिस बैठक में बैठा हूं ये बैठक बैठे, जितने भी योगी जन हैं उनकी योग की मुद्रा ही अपने में इतना होता है कि उनको देखकर लगता है कि ये योग में बैठे हैं। बाबा कष्ट तो नहीं देते हैं लेकिन हम जरूर बैठे। ये जो बैठक है ये बैठक सर्वोत्तम है। जो न बैठ सके, ऑपरेशन वगैरह कराए हो तो उनको मैं कष्ट नहीं देता हूं, लेकिन ऐसे बैठे ये योगी का आसन है। हमारी बहनें बैठ सकती हैं, दादियां बैठती थी इसमें। योगी का सर्वोत्तम आसन, इसको अर्थ पद्मासन कहते हैं, सुखासन भी कहते हैं, बहुत अच्छे है सारा। सामने देखें, सामने देखें, बाबा को देखें, बाबा को देखें, शिव बाबा को एकदम खुली आंखों से देखें, एकदम आंखें खुली हों, इनको विस्फारित नेत्र कहते हैं। अपलक, निर्निमेश, एक टिक, लगातार पूरी आंखों को खोल करके बाबा को ऐसा निहारें, प्रभु तुमको निहारने को दिल चाहता है, दिल में उतारने को दिल चाहता है, तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल चाहता है। पल को न बंद होना, ये पल न जाने देंगे, मिले कल्प बाद हमको, अब हम जुदा न होंगे। बाबा से पक्का वादा और पहली दृष्टि, संपूर्ण प्यार से स्वयं को भर ले, संपूर्ण शक्तियों से। ये आपका 3 से 5 मिनट प्रारंभिक, जब भी आलस्य लगे आप इस मुद्रा में बैठना, सीधा रीढ़ रज्जु हमारी सीधी रहे, सामने बाबा को देखें, बाबा का चित्र लगा दे, लाइट को देखें और स्वयं को भी लाइट होकर के आंखों से लगातार देखें। इन आंखों को कमांड दे दें कि पल को न बंद होना, बंद नहीं होना है, ये सबसे सुहाने हैं पल जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाये हुए। जमाना तो क्या तेरी यादों में बाबा, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए, गगन झुक गया वक्त भी ठहरा ठहरा, जमी भी जैसे जमी रह गई, रूहानी समा देखते देखते ये आंखें खुली की खुली रह गई। ये हमारा सवेरे का स्थूल रूप से तैयारी है अमृत वेले। जब भी आलस्य लगे तो आप आंखों को जरा भी बंद ना होने दें, शुरू में तो आपको लगेगा, कुछ समय के बाद लगातार आप लंबे समय तक याद में बैठ सकते हैं, फिर आपको नींद नहीं आएगी। और मन में एक विश्लेषण ले लें, विश्लेषण क्या है, विचार करें, एक मां का नौजवान बेटा अगर एक्सीडेंट होता है तो मां की नींद हफ्तों हफ्तों की कहां जाती है? मां को नींद आती है? मां को नींद आती है? क्यों नहीं, क्यों नींद नहीं आती है, क्यों नींद नहीं आती है? क्यों नींद नहीं आती है? क्योंकि उसका मोह है, उससे बड़ा गहरा लगाव है, उसका उससे अभिन्न प्यार है, वो नींद कहां जाती है? बाबा भी तो आपका बेटा है ना, भले उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है लेकिन वो भी तो अपना बेटा ही है ना, तो उस बेटे के प्यार में फिर नींद आपको कैसे आएगी, उसके प्यार में समा जाए। दूसरी बात, लौकिक दुनिया में एक दूसरे से प्यार होता है तो रातों रात की नींद उड़ जाती है, करवटे बदलते हैं, तारे गिनते हैं, कितना बिछो होता है प्यार में। बाबा भी तो हमारा माशूक है, हम उसके आशिक हैं, उसके प्रेमी हैं, बाबा हमको बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, और हम भी बाबा को बहुत प्यार करते हैं। आप सब सहमत हैं? सहमत हैं? बाबा बहुत प्यार करता है, सबको प्यार करता है, जो हाथ नहीं उठा रहे हैं उनको भी प्यार करता है ना बाबा, सबको प्यार करता है। हाँ, बाबा का प्यार न होता तो आप यहां न होते, बाबा का प्यार न होता तो हम यहां न होते। उसने बनाया है आपके लिए, आपको पक्का, आपको संपूर्ण बनाने के लिए जिम्मेदारी दी है, उसने ले ली है, कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि मैं अपनी सजनियों को तैयार करके, सजा के, श्रृंगार करके साथ में लेकर जाऊंगा। भाग के कहां जाएंगे आप, है ना? वो आपको आपसे जुदा नहीं करता है, वो अपने साथ में रखता है, उसकी दुआएं मिल रही है, उसका असीम प्यार है, वो पल पल हमारे साथ है। बाबा की मदद का पल पल अनुभव करना, पल पल अनुभव करना, ये हमारी सूक्ष्म चेकिंग होनी चाहिए। दिन भर में जो भी आपको बाबा की मदद मिलती है तो क्या करना है आपको, उस मदद को एक डायरी बना ले आज से, पक्का। भले अपना आप कन्नड़ा में लिखिए, कन्नड़ में लिखिए, हैं, अपनी भाषा में लिखिए, लेकिन डायरी में रोज आपको कम से कम 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन जितना लिख सके उसमें बाबा से बात करना है, बात करना है। आप कहेंगे भैया लिखना नहीं आता है, लिखना क्या है, बाबा से शुरू हो जाओ, बाबा मीठे बाबा आप हमको कितना प्यार करते हैं, ना मन में था ना चित्त में था, आप हमको ज्ञान में ले आए, आप ऐसा ज्ञान दिए जो दुनिया में किसी के पास है भी नहीं, आप हमको गॉडली यूनिवर्सिटी के गॉडली स्टूडेंट बना के प्रिंस प्रिंसेस बनाने वाले हैं, वाह बाबा आप कितना हमको प्यार करते हैं, आपने ज्ञान दिया, आपने हमको योग का ध्यान का बताया, अपने से संबंध जोड़ लिया, आपने पवित्र जीवन बना दिया, आपने बाबा इतना प्यारा परिवार दे दिया, आपने अपनी साथ में अपने गोद में अपने आंचल में लेकर कदम कदम पर हमारी आप मदद कर रहे हैं, बाबा आप कितनी हमारी मदद करते हैं। हम कभी कभी बाबा अलबेले हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि माया के तूफानों में मुझ आत्मा का दीपक अब बुझा कि तब बुझा, इतने में देखता हूं कि आप आए, घुटनों के बल बैठ गए, अपने हाथों का ओट दिया, सहारा दिया और मुझे तूफानों से आंधियों से मुझ आत्मा के लौ को बचा लिया और मैं फिर से प्रज्वलित हो गया। आपने बुझते बुझते मुझ आत्मा की दीप की लौ को फिर से प्रज्वलित कर दिया। बाबा आप हमारी कितनी हिफाजत करते हैं, कदम कदम पर माया है, कदम कदम पर मौत है, चारों तरफ अंधकार है, लेकिन आप कितनी रोशनी देते हैं। बाबा आप हमारे प्राणों की रक्षा करने वाले प्राणपति हैं, प्राणेश्वर हैं, प्राणनाथ हैं, प्राण निदान हैं, आप हमारे प्राण हैं, प्राणों से प्यारे हैं आप। बस 2-4 लाइन लिख करके जो भी आता हो टेढ़ी मेढ़ी भाषा में, आप कलम उठाते हैं लिखने से पहले बाबा तक पहुंचता है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे चार्ट तो रखो। आज बाबा कहते हैं देही भानी बच्चे ही चार्ट रखेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम चार्ट नहीं रख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ है? तो बाबा की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कितनी अच्छे नियम है। और मैं आपको बताऊं, 45 वर्ष हो गए यहां मधुबन में, एक तो अमृत वेला, ये सब बायोडाटा में नहीं बताया जाता है लेकिन प्रायः हमारे बारे में बताते भी हैं, जब से आए हैं मधुबन में तब से लक्ष्य होता है कि एक अमृत वेला भी मिस ना हो। 45 वर्ष हो गए, ये बाबा की देन है, ये बाबा की देन है, उसका सारा श्रेय मैं बाबा को देता हूं। दूसरा, लाल लाइट होती है बहुत सारे भाई बहनों को नींद आ जाती, लेकिन मुझे कितना भी थका मांदा हूं तो व्हाइट लाइट में कभी भी आलस्य आ सकता है, लेकिन रेड लाइट हुई मेरी आंखें खुल जाती, ये बहुत बाबा की देन है। तीसरी बात, अशरीरी बनने का अभ्यास जो मैं बताने वाला हूं आपको, वो अभ्यास ऐसा है कि मुझे केवल 5 मिनट टाइम दीजिए, मैं 5 मिनट में बॉडी से रिलैक्स होकर के जैसे मैं शरीर से अलग हुआ और 5 मिनट में मैं जाग भी जाता हूं और फिर आपको चैतन्य से दिखाई पड़ूंगा। केवल 5 मिनट में मैं शरीर से अलग होता हूं, अशरीरी बन जाता हूं और 1-2 घंटे के लिए मैं पूरी एनर्जी से भर जाता हूं। कहीं भी जाता हूं, कितना भी थका मांदा होता हूं, बहने कहते भाई जी क्लास में बैठना है और मुझे मालूम है कि बहुत थका मांदा हूं, उनसे कहता हूं केवल 5 मिनट टाइम दीजिए, मैं 5 मिनट में रिलैक्सेशन करता हूं, जल्दी से जल्दी शरीर से डिटैच हुआ और गया, शरीर से बाहर गया, अलग हुआ, आंखें खुली, लगता है कि मैं सो गया था, रिलैक्स हो गया, और 5 मिनट में उठ करके मैं बैठ जाता। ये बाबा की देन, अभिनंदन कीजिए। हाँ जरूर जरूर, मैं अपनी आत्म प्रशंसा में नहीं बात कह रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि उसकी देन कितनी बरसती, उसकी हम पर कितनी अनुकंपा है, उसका प्यार कितना बरसता है, पल पल अनुभव होता है। आज जो भी आपके सामने बैठे हैं, ये सब बाबा ने कैसे सिफतें दी कि एक संकल्प आया मधुबन, जब आए तो 2 संकल्प लिया। अब मैं मधुबन निवासी बन गया हूं, मुझे मधुबन की जो दिनचर्या है उसमें पूरा पक्का होना है, कोई देख के मुझको ये न कहे कि मधुबन निवासी। तब से अमृत वेला आज तक कभी मिस नहीं करता हूं। मैं बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी को देखता था, विश्वरतन दादा को देखता था, एक तरफ विश्वरतन दादा बैठते थे, एक तरफ दीदी बैठती थी हिस्ट्री हॉल में, और वो दृश्य अब भुलाया नहीं भूलता है कि रात को 11 बजे दीदी सिरोही से आई, और सवेरे मैं जब 4 बजे बैठता हूं तो देखता हूं कि दीदी बैठी है और दादा बैठे। मैं देख के हैरान हो गया। उस दिन का संकल्प कि अब मैं मधुबन निवासी बनना बन गया हूं, अब मुझे अमृत वेला कभी मिस नहीं करना है। तो इसके लिए दादियों ने इनाम दिया, दादी जानकी ने इनाम दिया, और चार्ट लिखने में भी कक्षा 9 में था तब से चार्ट लिख रहा हूं, कक्षा 9 में था। अभिनंदन की ये भी बहुत बड़ी बात, चार्ट ने ही सारा गीतों का पार्ट खोला है, चार्ट ने ही लेखक बनाया है, चार्ट ने हमको बहुत कुछ दिया। तो मैं समझता हूं कि आप भी पहली बात तो ये नोट कर लें कि अब से डायरी बना लें, डायरी में बाबा की मदद का अनुभव करें। जैसे आपने संकल्प किया, आपका पूरा हुआ संकल्प, तो आपको नोट करना चाहिए कि बाबा की मदद है, बहुत मदद करता है। एक बार मैं मुंबई जा रहा था, रिकॉर्डिंग के लिए जा रहा था, मोहिनी दीदी जी ने कहा कि आप जाना और बीच में भरूच जगह है वहां भट्टी कराना, एक दिन भट्टी करा के फिर आगे जाना। तो मैं उसके पहले, मैं प्रारंभिक दिन थे तो 500 गीतों की 2 डायरी हमारी आरंभिक डायरी गुम हो गई थी, वो गुम हो गई तो मिली नहीं। तीसरी डायरी जिसमें भी लगभग इतने गीत थे, ज्यादा नहीं था, मैंने उस गीत के डायरी को पर्स में रख करके और उसको लेकर के साथ में रखता था। मुझे 2:30 बजे उतरना था, भरूच में उतरना था, मैं ऊपर के बर्थ पे था ट्रेन में, उतरने लगा तो ऊपर से साइड के बर्थ पे अपना पर्स रख दिया और नीचे उतर करके सब सामान लेकर के मैं आके गेट पे बैठ गया। अब रेलवे स्टेशन भरूच पहुंचने वाली थी, 10 मिनट पहले, कोई स्टेशन भी नहीं था, 2 व्यक्ति आते हैं और टॉर्च जला करके दिखाते हैं, देखते हैं, और नीचे वालों को पूछते हैं ये आपकी है, ये आपकी है, ये आपकी है, किसी से पूछा तो मुझे आहट मिली कि क्या हो रहा है। तो देखता हूं मेरी तीसरी डायरी गुम होने वाली थी जो मैं साइड के बर्थ पे रखा था, देखता हूं तो मैंने कहा अरे बाप रे, आज तो मैं जो बहुत संभाल के रख रहा हूं अपने पास में, आज तो वो भी गुम होने वाला था, उसको मैं लेकर के इतने में बैठता हूं, स्टेशन आता है, सामान लेकर नीचे आता हूं, और फिर ये गीत बनता है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी, पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो, धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो, एक किरण अनदेखी आती, वो टार्च वाले आ जाते हैं, एक किरण अनदेखी आती और राह दिखा कर जाती है, भरते हुए न किसी ने देखा पर झोली भर जाती है, पर झोली भर जाती है। बाबा का असीम प्यार मिलता है। आप सबको देख के ऐसा मन करता है कि जो वर्तमान में हमारे भाई बहने आ रहे हैं इनको बाबा प्यार दो। मधुर वाणी के ग्रुप के साथ जब सामने होता हूं मैं फील करता हूं कि यही आंगन जब बाबा बाहें खोल करके सामने खड़े होते थे, आओ बच्चे, मीठे बच्चे, अपने मधुबन घर में विश्राम करो, ये बाबा के बोल सुनते थे तो आनंद से भर जाता था मन। आज भी बाबा हमको आगे करके, मधुरवाणी ग्रुप के भाई बहनों को आगे करके, पीछे खड़ा होकर आज भी आपका वेलकम करता है। ये कोई व्यक्ति नहीं कर रहे हैं, बाबा कर रहे हैं, दादियां कर रहे हैं, दीदियां कर रही हैं, स्वयं बाबा आपके साथ में। अभिनंदन कीजिए बाबा के बुलाने से आप यहां पर आए। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज से एक नया स्टूडेंट लाइफ करें, शुरू करें, एक डायरी जरूर बने और डायरी बना करके उसमें रोज बाबा से 4 लाइन 5 लाइन बात करें, या फिर चार्ट लिखें कि आज मैंने कितना याद में रही, लगभग कुछ क्या हुआ, सेवा में क्या हुआ, प्योरिटी में क्या हुआ, हमारी स्थिति कैसे रही, थोड़ा सा उसमें नटसेल में डाल दें। कभी मौका मिला, अब मौका तो नहीं मिलेगा, फिर मिलेगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं चार्ट कैसे लिखता रहा हूं, कदम कदम पर, अलग अलग समय पर अलग अलग बनाते रहे, किस तरह से लिखता रहा हूं, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। आप भी ये ना सोचे कि इनका इनसे पूछे, इनसे मिले, आपके मन में जो आता है वो लिखना, यही चार्ट है। जो आपको लगता है ये मेरी कमी कमजोरी है और उसके ऊपर विजयी बनना, उसके ऊपर अटेंशन देना, यही चार्ट है, कुछ और सोचना नहीं। दूसरों के बारोड से आप उधार ले लो, मैं जो आपको बता दूं वही करो, आपको बड़ा मुश्किल लगेगा, 2 दिन लिखेंगे छूट जाएगा। जब तक आप विलिंगली स्वेच्छा से अपने लिए नहीं तैयार करेंगे, तब तक वो चीज चलता नहीं। और सेल्फ प्रोग्रेस के लिए सेल्फ प्रोग्राम बनाने होंगे आपको, अपने आप, कोई के बताने से आपको इशारा मिल जाता है, लेकिन करना आपको है, चलना आपको है, बनना आपको है। एकला चलो रे, अपने आप चलो, अपनी मंजिल अपने आप संवारो, है ना। तूफानों से आंख मिलाओ और लहरों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो, उमंग उत्साह रहे, आगे बढ़ जाए। तो पहला तो आपको ये करना है कि अमृत वेले एक संकल्प लेकर के कि मुझे डांस करूं, मैं गाना बजाओ, दरवाजा बंद कर दो, लाल लाइट छोड़ो, व्हाइट लाइट में बैठो, 4 से 4:45 बजे तक, केवल 1.5 घंटा। अमृत वेला हमारे यज्ञ से मुकर्रर है टाइम, इस समय पर 1.5 घंटा बैठें, लेकिन आलस्य का नाम मात्र ना हो, उदासी का ना हो, झुटका खाने का ना हो। झुटका योग हमारा ज्ञान है ही नहीं। अगर कोई हमारे वरिष्ठ सामने बैठते हैं, उनको आलस्य आता है, ये ना सोचे कि देखो इनको आलस्य आ रहा है, उनके पास समय निकाल के हमारे लिए बैठ रहे हैं। मैं दादी जानकी को देखता था, दादी जी बीच में बैठे थे, दुबई में थे, दुबई में 25 किलोमीटर से मैं आया, देखता हूं कि दादी इतने में आई, 4 बजे दादी बैठ गई। ओम शांति भवन में कितने समय तक दादी, लास्ट तक भी दादी योग कराती रही। ये हमारा फर्स्ट फाउंडेशन है, हम फाउंडेशन को पक्का करें। हमारी दिनचर्या का आदिकाल अगर पक्का हो गया तो बहुत अच्छा होगा। तो आलस्य और अलबेलापन से मुक्त अपनी दिनचर्या बना लें। समझ में आई ना बात। अब आपको क्या करना है कि 1.5 घंटा ही योग कीजिए, लेकिन इस समय पर आलस्य ना हो, उसके लिए जो करना हो, मुरली के पॉइंट पढ़िए। कुछ युक्ति और आपको बता देता हूं, समय तो कम है लेकिन बताता हूं, बहुत जरूरी है। अगर अमृत वेले का आनंद लेना है, अगर नहीं लेना ही है, लेना है ना, सबको लेना है ना, सबको लेना है, अमृत वेला पक्का करना है, तो 1 दिन पहले से अपनी दिनचर्या का बनाना शुरू करें, अमृत वेले की तैयारी करें। दिन की दिनचर्या अच्छी रहे तो अमृत वेला भी अच्छा होगा। तो ऐसा नहीं कि दिन भर जो भी चाहे वो कर लें और अमृत वेला अच्छा बन जाए, नहीं। रात को हमारा भोजन बड़ा ही हल्का हो, सुपाच्य हो और अर्ली हो, और अगर छूट जाए, भोजन न करें, तो सर्वोत्तम, कोई शरीर नहीं छोड़ेगा, पक्का है। एक रात का भोजन छोड़ने से कोई शरीर नहीं छूटे और अच्छा हो जाएगा। ये कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर कौन कर सकते हैं, ये पक्का कीजिए। अमृत वेले का आनंद लेना है तो इस बात को प्राथमिकता देनी ही होगी। आप जल्दी खाइए, अगर खाना ही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको रात को 2 बजे भूख लग जाए तो आपको भंडारे में दौड़ के चले जाओ, पहुंच के जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन रात को कम से कम भोजन करें, अर्ली करें, तैयारी करें सवेरे की, आपको योग में बड़ा आनंद मिलेगा। जिनको भी आलस्य आता है उस बात को पक्का करें। दूसरी बात, कोई कहते हैं कि 2 बजे से उठ जाए भाई जी तो फिर सब 4 बजे तक बड़ी नींद आने लगती है। फिर मैं कहता हूं कि 2 बजे उठिए तब बैठिए, लेकिन 4 से 5, पौने 5 बजे तक का जो समय है इसमें आप अच्छी तरह से बैठें। उसके पहले बैठ सके तो और अच्छा है, आनंद लेना जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं कि 2 बजे उठ जाए और 4 बजे सो जाए, ठीक है, 4:45 बजे के बाद। दूसरा प्रश्न भाई बहनों का होता है कि भाई जी अगर हम दिन में रेस्ट नहीं मिलता है, रात को देरी से सोए, सवेरे अमृत वेले बैठकर उठ के हम याद में भी बैठे, तो क्या अमृत वेले रेस्ट करना चाहिए, सोना चाहिए या नहीं? तो मैं उनको बताता हूं कि रेगुलर अपनी आदत नहीं डालनी चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा रिलैक्सेशन से आपकी दिनचर्या फ्रेश रहती है तो थोड़ा रेस्ट करने में कोई हर्जा नहीं। तो क्या होगा कि अमृत वेले भी किया और अमृत वेले के बाद आपने रेस्ट नहीं किया, तो दिन की दिनचर्या में रेस्ट ना करने से इतना चिड़चिड़ापन होगा, इतनी दिनचर्या आपको डिस्टर्ब करती रहेगी, सारा दिन आपको आलस्यमय लगेगा और आप बहुत थके रहेंगे। इसलिए रेस्ट कर लें, थोड़ा रेस्ट करने में कोई हर्जा नहीं, लेकिन रेगुलर की आदत अंदर डालें। हाँ, अशरीरी बनने का अभ्यास आपका रहे कि आपको थोड़ा सा क्लास से जाने से, मुरली में जाने से पहले 5 मिनट या 10 मिनट रिलैक्स हो गए और उसमें फ्रेश हो गए तो कोई पाप नहीं लगेगा। मैं आपको इसके लिए छूट देता हूं कि आप रेस्ट कर सकते हैं, अभिनंदन कीजिए। हाँ, बाद में पूछते हैं, कई भाई बहने पूछते हैं, तो मैं उनको बताता हूं कि दिन की दिनचर्या आपकी अच्छी हो जाए तो थोड़ा रेस्ट करने में अच्छा नहीं, अच्छा कोई बुराई नहीं। तो पहला तो यह है कि अमृत वेले आपको शक्तिशाली बनाना है, उसमें निराकारी, आकारी, साकारी कई यादें। मैं वर्तमान समय पर और बता दूं चलते चलते कि हम सब याद में बैठते हैं, मैं भी याद में बैठता हूं, लेकिन जब साकारी याद आने लगती है, साकारी याद का मतलब है साकार बाबा के दिन की याद आने लगती है, और जब मैं 18 जनवरी पे यहां गीत गाता हूं उसमें यह एक साकार में मिलन का प्यारा सा नजारा अव्यक्त में दोबारा, जब वो गाने लगता हूं तो इतने प्रेम के आंसू आने लगते हैं। वो साकार संग वाले प्यारे से दिन निराले, आता है याद हमको गुजरा हुआ जमाना, वो दिन सुहेज वाले हाथों से वो खिलाना, गोदी में वो बिठाना, वो नैनों में समाना, कहकर के बच्चे बच्चे वो खेलना खिलाना, वो सैर का कराना, आगे को बढ़ते जाना, वट वृक्ष के तले तक देने विदाई जाना, रूमाल का हिलाना, आंखों में आंसू लाना, वो लाल अक्षरों के खत याद हैं अभी भी, वो दिन साकार वाले भूलेंगे ना कभी भी, भूलेंगे ना कभी भी। जब उन स्मृतियों में जाते हैं, आज भी लगता है कि बाबा की कुटिया में जाते हैं तो लगता है बाबा पत्र लिख रहे हैं, वहीं पर आप भी खड़े होकर देखो कि बाबा हमारे नाम से मेरे लिए पत्र लिख रहे हैं। बाबा के कमरे में जाओ, वही फीलिंग करो जो बाबा देते हैं आज भी। शांति स्तंभ पे जाओ तो केवल इसे खड़े ना हो जाओ, वो याद कर लो जो बाबा की शिक्षाएं हैं। घर में बैठे आप वहां जगगुर सेंटर में भी हैं, हैं? बैठे हैं, वहां बैठे बैठे भी आप शांति स्तंभ के सामने खड़े हो जाएं, प्यारे वत्सों वो सब बाबा के सब चारों तरफ जो लिखा है वो याद कर लीजिए, अनुभव कीजिए। आज भी बाबा बैठे हैं, बाबा डायमंड हॉल का चक्कर लगा रहे हैं, मैं बाबा से दृष्टि ले रहा हूं, आधे घंटे तक अनुभव कीजिए कि मैं डायमंड हॉल के बीच में बैठा हूं और बाबा दादी को लेकर के, दादी बाबा को लेकर के पूरे आधे घंटे तक चक्कर लगा रहे हैं, और पूरा एक आधे घंटे तक आप बाबा को देखते रहिए। ये साकारी याद है, बाबा की याद में मगन हो जाते। आइए
प्रभु का ध्यान।